अध्ययन लेख 21। इस लेख का अध्ययन 18 से 24 जुलाई के दौरान किया जाएगा। विषय: प्रकाशित वाक्य में हमारे भविष्य के लिए आशा। ये लेख प्रकाशित वाक्य 22 के 20 पर आधारित है, जहां लिखा है, आमीन, प्रभु यीशु आ। गीत 142, अपनी आशा कसकर थामे रहें। एक झलक: इस लेख में हम प्रकाशित वाक्य की किताब से जानेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग यहोवा के वफादार रहेंगे और उसके राज का साथ देंगे, उन्हें भविष्य में बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, पर जो उसका विरोध करेंगे और उसके राज के खिलाफ खड़े होंगे, उनका नाश कर दिया जाएगा। पैराग्राफ एक। सवाल: आज सभी इंसानों को कौन सा जरूरी फैसला लेना है? आज सभी लोगों को एक जरूरी फैसला लेना है। क्या वो सारे जहां के मालिक यहोवा का साथ देंगे या उसके दुश्मन शैतान का? वो दो नाव में सवार नहीं हो सकते। आज वो जो फैसला लेंगे, उससे तय होगा कि उनका भविष्य कैसा होगा। महासंकट के दौरान जब इंसानों का न्याय होगा, तो यह तय किया जाएगा कि कौन बचेगा और किसका नाश कर दिया जाएगा। पैराग्राफ दो। सवाल क: इब्रानियों 10 के 35 से 39 में हमें क्या करने का बढ़ावा दिया गया है? सवाल ख: प्रकाशित वाक्य की बातें ध्यान में रखने से हम क्या कर पाएंगे? इब्रानियों 10 के 35 से 39 में लिखा है, इसलिए हिम्मत के साथ बेझिझक बोलना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें इसका बड़ा इनाम दिया जाएगा। तुम्हें धीरज धरने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के बाद तुम वो पा सको जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, और जो आने वाला है वो आएगा और देर नहीं करेगा। लेकिन मेरा नेक जन अपने विश्वास से जिंदा रहेगा, और अगर वो पीछे हट जाए तो मैं उसे खुश नहीं होऊंगा। हम पीछे हटकर नाश होने वालों में से नहीं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास रखते हैं, ताकि अपना जीवन बचा सकें। अगर आपने यहोवा के राज का साथ देने का फैसला किया है, तो आपने सही किया है। अब शायद आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे कि वो भी ये फैसला लें। इसके लिए आप प्रकाशित वाक्य की किताब में दी बातें ध्यान में रख सकते हैं। इसमें न सिर्फ ये बताया है कि परमेश्वर के दुश्मनों का क्या होगा, बल्कि ये भी बताया है कि जो लोग यहोवा के वफादार रहेंगे, उन्हें क्या क्या आशीषें मिलेंगी। अगर आप इन बातों को पढ़ेंगे और इनके बारे में सोचेंगे, तो मुश्किलें आने पर आप यहोवा की सेवा करते रह पाएंगे। साथ ही आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे कि वो यहोवा की सेवा करने का फैसला करें और उस पर बने रहें। पैराग्राफ तीन। सवाल: इस लेख में हम किन सवालों पर चर्चा करेंगे? इस लेख में हम खासकर दो सवालों पर चर्चा करेंगे। एक, जो लोग यहोवा के राज का साथ देंगे, उनका क्या होगा? दो, उन लोगों का क्या होगा जो सुर्ख लाल रंग के जंगली जानवर का साथ देंगे? वफादार लोगों के लिए इनाम। पैराग्राफ चार। सवाल: यूहन्ना स्वर्ग में यीशु के साथ किन्हें खड़ा देखता है? एक दर्शन में प्रेषित यूहन्ना दो समूह के लोगों को देखता है, जो यहोवा के राज का साथ देते हैं और जिन्हें हमेशा की जिंदगी दी जाएगी। पहले समूह में 144,000 लोग हैं। उन्हें धरती पर से चुना गया है ताकि वो स्वर्ग जाएं और यीशु के साथ मिलकर धरती पर राज करें। यूहन्ना देखता है कि ये 144,000 जन यीशु के साथ सियोन पहाड़ पर यानी स्वर्ग में खड़े हैं। पैराग्राफ पांच। सवाल: बचे हुए अभिषेक जनों का भविष्य में क्या होगा? इन 144,000 जनों का चुना जाना पहली सदी से शुरू हो गया था, और अब तक इनमें से हजारों स्वर्ग जा चुके हैं। यूहन्ना को बताया गया कि आखिरी दिनों में धरती पर इनमें से सिर्फ कुछ बचे हुए होंगे। महासंकट शुरू होने से पहले उन पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी, फिर महासंकट के दौरान उन्हें स्वर्ग उठा लिया जाएगा। सभी 144,000 जन यीशु के साथ मिलकर परमेश्वर के राज में राज करेंगे। पैराग्राफ 6 और 7। सवाल का: अभिषिक्त मसीहियों को देखने के बाद यूहन्ना ने क्या देखा? सवाल ख: चाहे हमारी आशा स्वर्ग में जीने की हो या धरती पर, हम सब क्यों प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 की भविष्यवाणी पूरी होते देखना चाहते हैं? स्वर्ग में 144,000 जनों को देखने के बाद यूहन्ना एक बड़ी भीड़ को देखता है, जिसे कोई आदमी गिन नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10। इस बड़ी भीड़ में कौन लोग हैं? यूहन्ना ने लिखा, ये वो हैं जो उस महासंकट से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने चोगे मेमने के खून में धोकर सफेद किए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:14। महासंकट से बच निकलने के बाद इस बड़ी भीड़ के लोग धरती पर हमेशा हमेशा तक जिएंगे और उन्हें कई आशीषें मिलेंगी। जरा सोचिए, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में दी बातें पूरी होंगी तो हमें कैसा लगेगा? वो क्या ही खुशी का समा होगा। चाहे हमारी आशा स्वर्ग में जीने की हो या धरती पर, उस वक्त हम सभी बहुत खुश होंगे कि हमने यहोवा के राज का साथ दिया। पर आइए जाने कि महासंकट के दौरान परमेश्वर के दुश्मनों का क्या होगा। विरोधियों का बुरा अंजाम। पैराग्राफ 8। सवाल, किस घटना से महासंकट की शुरुआत होगी और ज्यादातर लोग क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले लेख में सीखा था, दुनिया की सरकारें बहुत जल्द महानगरी बेबीलोन यानी दुनिया भर में फैले झूठे धर्मों को खत्म कर देंगी। इस घटना से महासंकट की शुरुआत होगी। जब सभी धर्मों का नाश हो जाएगा, तब क्या बहुत सारे लोग यहोवा की उपासना करना चाहेंगे? नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखा है कि वो पहाड़ों में जा छिपेंगे, यानी वो सरकारों और व्यापार जगत पर भरोसा करेंगे। वो परमेश्वर के राज का साथ नहीं देंगे, इसलिए यहोवा उन्हें विरोधी मानेगा। पैराग्राफ 9। सवाल, महासंकट के दौरान यहोवा के लोग क्यों सबसे अलग नजर आएंगे और उनके साथ क्या होगा? महासंकट के उस मुश्किल दौर में यहोवा के लोग सबसे अलग नजर आएंगे। सिर्फ वो ही अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर रहे होंगे और जंगली जानवर का साथ नहीं देंगे। ये देखकर परमेश्वर के विरोधी गुस्से से पागल हो जाएंगे और कई राष्ट्र मिलकर परमेश्वर के लोगों पर हमला करेंगे। बाइबल में इसे मागोग देश के गोग का हमला कहा गया है। पैराग्राफ 10। सवाल, जब यहोवा के लोगों पर हमला होगा तो वो क्या करेगा? जब यहोवा के लोगों पर हमला होगा तो उसे कैसा लगेगा? वो कहता है, मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठेगी। यहेजकेल 38:18-21-23। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में बताया गया है कि यहोवा क्या करेगा। वो अपने लोगों को बचाने के लिए और दुश्मनों का नाश करने के लिए अपने बेटे को भेजेगा। यीशु के साथ स्वर्ग की सेनाएं भी होंगी, यानी वफादार स्वर्गदूत और 144,000 साथी राजा। इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा? जितने भी लोग और संगठन यहोवा के खिलाफ खड़े होंगे, उन सब का नाश कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19:19-21 में लिखा है, मैंने देखा कि जंगली जानवर और धरती के राजा और उनकी सेनाएं उस घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई, और उस जंगली जानवर को साथ ही उसके सामने चमत्कार करने वाले झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ लिया गया, जो चमत्कार दिखाकर उन लोगों को गुमराह करता था जिन्होंने खुद पर जंगली जानवर का निशान लगवाया था और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। उन दोनों को जीते जी आग की उस झील में फेंक दिया गया जो गंधक से जलती रहती है, और बाकी लोग घुड़सवार के मुंह से निकलने वाली लंबी तलवार से मार डाले गए, और सभी पक्षियों ने भर पेट उनका मांस खाया। युद्ध के बाद एक शादी। पैराग्राफ 11। सवाल, प्रकाशित वाक्य के आखिर में कौन सी खास घटना के बारे में बताया गया है? जब परमेश्वर के दुश्मनों का नाश हो जाएगा, तब धरती पर वफादार लोग खुशी से झूम उठेंगे। तब स्वर्ग में कैसा माहौल होगा? महानगरी बेबीलोन के नाश के वक्त स्वर्ग में बहुत खुशियां मनाई गईं, पर अब कुछ ऐसा होगा जिस वजह से स्वर्ग में और ज्यादा खुशियां मनाई जाएंगी। प्रकाशित वाक्य की किताब के आखिर में बताया गया है कि मेमने की शादी होगी। प्रकाशित वाक्य 19:6-9। पैराग्राफ 12। सवाल, प्रकाशित वाक्य 21:1-2 के मुताबिक मेमने की शादी कब होगी? मेमने की शादी कब होगी? हरमगिदोन का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सभी 144,000 जन स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन ये शादी तब नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:1-2 में लिखा है, फिर मैंने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी मिट चुके थे और समुन्दर ना रहा। मैंने पवित्र नगरी नई यरूशलेम को भी देखा, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतर रही थी। वो ऐसी सजी हुई थी जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सिंगार करती है। हरमगिदोन के युद्ध में जब सभी दुश्मनों का नाश हो जाएगा, तो उसके बाद मेमने की शादी होगी। पैराग्राफ 13। सवाल, मेमने की शादी का क्या मतलब है? जब एक आदमी और औरत की शादी होती है तो वो एक हो जाते हैं। उसी तरह जब मेमने की शादी होगी तो यीशु और उसकी दुल्हन यानी 144,000 जन एक हो जाएंगे। वो मिलकर 1,000 साल के लिए धरती पर राज करना शुरू करेंगे। एक खूबसूरत नगरी और उससे मिलने वाली आशीषें। पैराग्राफ 14 और 15। सवाल, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में 144,000 जनों को किस तरह दर्शाया गया है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में 144,000 जनों को एक खूबसूरत नगरी के तौर पर दर्शाया गया है। इस नगरी का नाम नई यरूशलेम है। यह नगरी नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी है। इन 12 पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेषितों के नाम लिखे हैं। जब यूहन्ना ने यह दर्शन में देखा होगा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। एक पत्थर पर उसका खुद का नाम था। यह देखकर वो खुशी से फूला नहीं समाया होगा। यह नगरी बहुत ही अलग है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही नाप की हैं। नगरी की मुख्य सड़क खरे सोने की बनी है। उसके 12 फाटक मोतियों के बने हैं और उसकी नींव और दीवारें कीमती रत्नों से सजी हुई हैं। पर उस नगरी में एक चीज नहीं है। यूहन्ना आगे कहता है, मुझे उस नगरी में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही उसका मंदिर है और मेमना भी है। उस नगरी को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से जगमगाती है और मेमना उसका दीपक है। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 और 23। सभी अभिषिक्त मसीही स्वर्ग में यहोवा के साथ होंगे, इसलिए उन्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा यीशु स्वर्ग में महायाजक बन चुका है और उसकी अगुवाई में सभी अभिषिक्त यहोवा की पवित्र सेवा करेंगे। इन कारणों से यहोवा और यीशु को नई यरूशलेम का मंदिर बताया गया है। बाहर दी तस्वीर का शीर्षक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में बताया है कि नई यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतर रही थी। इसका मतलब है कि 1,000 साल के दौरान इस नगरी से धरती पर परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों को ढेरों आशीषें मिलेंगी। पैराग्राफ 16। सवाल, परमेश्वर के राज के 1,000 साल के शासन में इंसानों को क्या क्या आशीषें मिलेंगी? हालांकि नई यरूशलेम की भविष्यवाणी खासकर अभिषिक्त मसीहियों के बारे में है, लेकिन जिन लोगों की आशा धरती पर जीने की है उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के राज के 1,000 साल के शासन में नई यरूशलेम की वजह से धरती पर रहने वालों को बहुत सी आशीषें मिलेंगी। यूहन्ना ने इन आशीषों को जीवन देने वाली पानी की नदी के तौर पर बताया। उसने ये भी लिखा कि नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे हैं, जिनकी पत्तियों से राष्ट्रों के लोगों के रोग दूर हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2। नदी और पेड़ों का मतलब है परमेश्वर के ऐसे इंतजाम जिनके जरिए इंसान 1,000 साल के दौरान धीरे धीरे परिपूर्ण हो जाएंगे। तब कोई बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई दुख दर्द रहेगा। पैराग्राफ 17। सवाल, 1,000 साल के दौरान किन लोगों को आशीषें मिलेंगी? 1,000 साल के दौरान किन किन लोगों को ये आशीषें मिलेंगी? सबसे पहले तो बड़ी भीड़ के लोगों को, जो हर्मगिदोन से बच निकलेंगे, और अगर नई दुनिया में उनके बच्चे होंगे तो उन्हें भी आशीषें मिलेंगी। उनके अलावा प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में बताया है कि मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 के 11 से 13 में लिखा है, मैंने देखा कि एक बड़ी सफेद राजगद्दी है और उस पर परमेश्वर बैठा है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उन्हें कोई जगह न मिली। और मैंने मरे हुओं को यानी छोटे बड़े सबको राजगद्दी के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई जो जीवन की किताब है। उन किताबों में लिखी बातों के मुताबिक मरे हुओं का उनके कामों के हिसाब से न्याय किया गया। और समुन्दर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और कब्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक का उसके कामों के हिसाब से न्याय किया गया। इनमें अच्छे और बुरे दोनों होंगे, पर क्या इसका यह मतलब है कि सभी मरे हुओं को जिंदा कर दिया जाएगा? नहीं, अच्छे लोगों का मतलब है वो लोग जो यहोवा के वफादार थे और जिनकी मौत हो गई, और बुरे लोगों का मतलब है वो लोग जिन्हें यहोवा के बारे में सीखने का मौका नहीं मिला। प्रेषितों 24 का 15। लेकिन जिन लोगों के पास यहोवा की सेवा करने का मौका था पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो दुष्ट कहलाएंगे। और उन्हें जिंदा नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ 16 और 17 से संबंधित चित्र शीर्षक, नदी और पेड़ों से किन्हें फायदा होगा। आखिरी परीक्षा पैराग्राफ 18, सवाल, हजार साल के शासन के खत्म होते होते क्या हो चुका होगा। हजार साल के शासन के खत्म होते होते धरती पर रहने वाले सभी इंसान परिपूर्ण हो जाएंगे। आदम से मिला पाप और उसका असर पूरी तरह मिट चुका होगा। इस तरह इंसान जो पहले पाप की वजह से मानो मरे हुए थे, हजार साल के खत्म होने तक जिंदा हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:5। पैराग्राफ 19, सवाल, आखिरी परीक्षा क्यों होगी। हजार साल के पूरे होने पर शैतान को अथाह कुंड से निकाला जाएगा और वो धरती पर रहने वाले सभी परिपूर्ण इंसानों की परीक्षा लेगा। उसने परिपूर्ण यीशु की भी परीक्षा ली थी, लेकिन यीशु यहोवा का वफादार रहा। आखिरी परीक्षा के दौरान हर एक परिपूर्ण इंसान के पास ये साबित करने का मौका होगा कि वो यहोवा का वफादार रहेगा या नहीं। तब जो कोई यहोवा का वफादार रहेगा उसे हमेशा की जिंदगी और सच्ची आजादी मिलेगी, लेकिन जो वफादार नहीं रहेगा उसे शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पैराग्राफ 20, सवाल, प्रकाशित वाक्य में दी भविष्यवाणियों के बारे में सोचकर आपको कैसा लगता है। प्रकाशित वाक्य की किताब पर चर्चा करके आपको कैसा लगा। जब आपने सोचा कि इसमें दी भविष्यवाणियां किस तरह पूरी होंगी और आप भी वहां होंगे, तो क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए? क्या आप में जोश नहीं भर आया कि आप दूसरों को बढ़ावा दें कि वो भी यहोवा की उपासना करें? बेशक हम सभी ने ऐसा महसूस किया होगा और प्रेषित यूहन्ना की तरह हम भी कहना चाहते हैं, आमीन, प्रभु यीशु आ। प्रकाशित वाक्य 22:20। आपका जवाब क्या होगा? आज हमें कौन सा जरूरी फैसला लेना है? मेमने की शादी का क्या मतलब है? यहोवा के वफादार लोगों को क्या क्या आशीषें मिलेंगी? गीत 27, परमेश्वर के बेटों का जाहिर होना। लेख समाप्त।